आप सुन रहे हैं हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट।
हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट हेल्दी जिंदगी सीजन 2 के नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी होस्ट योगिता यादव, एडिटर हेल्थ शॉर्ट्स हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्दी जिंदगी की राह और आसान बना सकें। अपने इसी वादे के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं।
दोस्तों, निर्माण की सबसे नाजुक और अनुशासित कोई प्रक्रिया है तो वह है एक मनुष्य के निर्माण की। एक नन्हा शिशु, स्त्री से निकलने वाले एग और पुरुष के शुक्राणु से मिलकर बनता है, मगर रिप्रोडक्शन की ये तैयारी आपके बेबी प्लान करने से बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। जी हाँ, आपके जन्म के साथ ही एक बेबी गर्ल के शरीर में गर्भावस्था में ही अंडों का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी हर बच्ची अपने साथ अंडों का एक पूरा बैंक लेकर जन्मती है, जिनकी संख्या उसके पैदा होने और बड़े होने के क्रम में लगातार घटती रहती है। यानी जो हमारी रिप्रोडक्शन की आइडियल एज होती है 21 से 40 तक, तब लगातार हमारे अंडों की संख्या घटने लगती है। इसलिए वे लड़कियां जो देर से बेबी प्लान करना चाहती हैं, उनके लिए एग फ्रीजिंग एक बढ़िया विकल्प साबित हो रहा है। एग फ्रीजिंग क्या है और ये महिलाओं के कितने काम का है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीता बख्शी। डॉक्टर रीता, स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में।
बहुत बहुत नमस्कार एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जो सब्जेक्ट उठाया है वो मेरे दिल और दिमाग दोनों से बहुत करीब है और मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ इस तरह की चीज आप अपने प्रोग्राम में लेकर आए।
डॉक्टर रीता इस क्षेत्र में 35 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव रखती हैं और प्रजनन संबंधी तमाम समस्याओं के बारे में उनकी गहरी समझ है। तो डॉक्टर रीता, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि हम ये जानें कि वास्तव में एग फ्रीजिंग क्या है, हमारे श्रोता ये जान सकें कि क्या होता है एग फ्रीजिंग।
आप लोगों ने एग बॉइलिंग तो बहुत बार सुना है, एग फ्रीजिंग शायद आज पहली बार सुन रहे हो। देखिए, जैसे आप बता रहे थे कि भगवान ने आदमी और औरत को अलग बनाया है। आदमी की जो फैक्ट्री है स्पर्म्स, यानी कि उसका जो शुक्राणु है वो जिंदगी भर बनता रहता है। यानी कि उसकी कोई एज में कहो, एक आइडियल एज है, ऑप्टिमल एज है, पर ऐसा नहीं है कि 50, 60 या 65 या 70 में भी आदमी के शुक्राणु बन रहे हैं। मगर एक औरत को, जैसा आपने बताया कि एक उसका राधर, आप मानेंगे कि जब जिससे शुरू होती है, पैदा होने से पहले और पैदा होने तक भी उसके जो एग्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जब वो पैदा हुई तो करीब से 4 लाख के करीब एग्स हैं उसके पास, जो हर महीने। अब क्या होता है, हमारी जो अंडाशय या ओवरीज हैं उसके अंदर हर महीने 5, 7, 10 एग्स भागना शुरू करते हैं, और जब जैसे सबने 10 एग बाहर आए और उन्होंने उनमें से एक एग ऐसा है जो आगे आ जाता है और बाकी के सब मर जाते हैं। तो ये जो मरने की जो प्रक्रिया है ये भी चलती जा रही है। यानी कि नंबर पहले ही हमारे पास एक कुछ हमें मिले हैं, उसमें से कम होते जा रहे हैं। हर महीने 10-12 शुरू हुए, उसमें एक आगे गया, यानी कि एक हमारा अब वो अंडा है जिसके अंदर अगर उस समय वो बड़ा होगा अंडा, 10 से 12 से 14 दिन लगते हैं और फिर वो रप्चर होके बाहर आएगा, उस समय अगर स्पर्म मिल गया तो वो बच्चा बन जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तो इस तरीके से अंडे हमारे जो है वो हर महीने कम होते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया 21 से 40 साल है, पर 21 से 24 साल की जो उम्र है उसमें हमारे बेस्ट एग्स होते हैं। यानी कि सबसे अच्छे अंडे हमारे, अगर किसी को कहा तो वो ये, पहले जमाने में लोग कहते थे अरे हम तो हवा की तरह प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि शादी कब होती थी, 18, 19, 20, 21। यानी कि उनके बेस्ट एग्स और बेस्ट फर्टिलिटी टाइम और बेस्ट मैरिज टाइम कोइंसाइड करता था। अब क्या है, शादी 30, 32, 34, 35 या इवन लेटर। तो अब और पुराने वक्त में ये फर्क आ गया है। तो एक फ्रीजिंग है क्या? देखिए एक फ्रीजिंग इसमें क्या करेंगे हम कि हर महीने, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्स खत्म हो रहे हैं आपके, तो पहले दिन से जैसे ही मेंसेस आए हमने आपको इंजेक्शन लगाने शुरू करे, यानी कि हार्मोनल इंजेक्शन है, शॉर्ट टाइम है, 10 से 12 दिन के इंजेक्शन होते हैं, रोज पेट पे ऊपर लगते हैं, बहुत आसान है, आप खुद लगा लोगे। ऐसे जैसे इंसुलिन लोग डायबिटीज वाले खाने से पहले लगाते हैं, उसी तरह के इंजेक्शन है और बहुत ही आरामदेह इंजेक्शन है। ये बहुत बारीक नीडल होती है। तो आपने ये इंजेक्शन लगाया और ये प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बोला मेंसेस से 10 से 12 दिन की होती है।
डॉक्टर रीता, इससे पहले हम प्रोसेस में जाएं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे माइंड में आया कि एक छोटी सी बच्ची मिलियंस ऑफ एग लेकर पैदा हो रही है
जी।
इन एग का साइज आखिर क्या होता है?
बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, मतलब ना तो आंख देख सकती है और माइक्रोस्कोप भी जो आप बोलेंगे वो बहुत ही हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर ये नजर आता है। जब हम भी निकालते हैं एग्स फ्रीज करने के लिए तो बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। तो बहुत ही टाइनी सेल होता है, स्पर्म भी और एग भी। एग के संग एक बहुत अलग चीज है, वैसे एग अगर आप कहेंगे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ा सेल और सबसे ज्यादा पानी वाला, मैक्सिमम वाटर इसमें होता है, इस एग सेल के अंदर होता है, और कहने को सबसे बड़ा मगर अगर सूक्ष्म आंखों से देखोगे तो दिख नहीं सकता, तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखना पड़ेगा
जी। अब आप प्रोसेस बता रही थी उस पर आगे बात करते हैं जी।
तो जैसा मैंने कहा कि हर महीने जो मरने वाले एग्स थे, जैसे मैंने कहा कि वो जो 8, 10, 12 मर जाते, उनको हमने मरने नहीं दिया और हमने कहा आप भी साथ ही दौड़िए, जैसे वो एक एग आगे जाने वाला है आप भी साथ ही दौड़िए। तो हमने इंजेक्शन लगा दिए पहले मेंसेस के पहले दूसरे दिन से लेके 10 दिन के लिए। अब 10 दिन में वो भी एग बड़े होते चले गए, वो भी साथ साथ बड़े हो गए। तो अब मेरे पास 12वें 14वें दिन करीब 10, 12, 14, 15, 20 जितने आपकी बॉडी में एग्स हैं, देखो डिपेंड करता है, आपकी बॉडी में एग ही 4 हैं तो 4 ही आगे आएंगे, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा नंबर ऑफ एग्स हैं तो ज्यादा नंबर आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से ये एग हमारे बड़े हो गए और 12वें 14वें दिन जब मैंने देखा कि हमारे पास अच्छे खासे एग, अच्छा खासा साइज, यानी कि 16 to 18 जो हम अपने अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही देखूंगी मैं एग्स को, क्योंकि ये एग क्या होता है, एक थैली यानी कि फॉलिकल के अंदर होता है, तो वो फॉलिकल मुझे दिखाई दे रहा है, एग नहीं दिख रहा मगर फॉलिकल मुझे दिख रहा है बड़ा होता हुआ, जैसे कहते हैं गुब्बारा या थैली पानी भरी हुई हो उसके अंदर एक टाइनी सा एग है, तो वो थैली बड़ी होती हुई दिखती है, और जब वो अराउंड 18-20 mm की हो जाती है तब मुझे पता है कि अब ये एग राइप यानी कि मेच्योर हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक इंजेक्शन लगाती हूँ कि ये फटने का मतलब अलग हो जाए उस थैली से मगर बाहर ना आए। तो बाहर आने से पहले यानी कि 36 घंटे लगते हैं जब वो इंजेक्शन लगा और रप्चर होने में, तो 36 घंटे से पहले ही मैं इनको एक नीडल डालूंगी अल्ट्रासाउंड के थ्रू ओवरी में, जो वेजाइना के थ्रू होता है, ऊपर से कोई सर्जरी नहीं है पेट की। तो आप बेहोश हैं, बेहोश मतलब हल्का सा बेहोशी जिसे कहते हैं, एक इंजेक्शन लगाया आप हल्का सा सोए, उसमें मैं वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड डालूंगी और प्रोब में, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू नीडल बस एक नीडल डाली और सक कर लिए, सक सक सक, ऐसे करते करते मैं सारे अंडे जितने उस दिन के हैं, उस महीने के हैं, 10-12 एक अंडाशय में, दूसरे वाले ओवरी में भी 10-12, तो मेरे पास 20, 22, 24 जितने भी नंबर हैं वो महीने के मैंने निकाल लिए। तो अब ये जब मैंने निकाल लिया, अब इसको मैंने माइक्रोस्कोप में देखा,
ये पेनफुल प्रोसेस होता है या इजी, पेशेंट को मालूम नहीं चलता?
मैं एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि जीरो पेन है, क्योंकि बेहोशी में हो रहा है, आप उठ के बोलते अरे हो भी गया, इट्स लाइक दैट, बहुत 10-15 मिनट का प्रोसीजर है और आप सो रहे होते हो, उस प्रोसेस के अंडर आपको जीरो पेन होता है। तो पेन इस पूरे प्रोसेस का कहीं भी नहीं है, ना तो इंजेक्शन लगने में पेन है, ना आपको एग्जामिनेशन में पेन है, और ना ओवम पिकअप, इसको हम ओवम पिकअप कहते हैं, ना इसमें पेन है। तो उस दिन क्योंकि आप बेहोशी के अंडर हैं, आप एक बहुत ही अगेन बारीक नीडल से सक हो रहा होता है और पूरे के पूरे एग्स उस महीने के आपने सक करके बाहर निकालिए। फिर हम इसको -196, जीरो को हम आइस कहते हैं, -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फ्रीज करके रखते हैं। और अब ये फ्रोजन यानी कि हाइबरनेशन में चले गए। अब जब तक आप नहीं इनको उठाएंगे ये सोने चले गए। अब जब भी आपको जरूरत होगी जिस साल में, तब आप इसको थॉ करेंगे यानी कि वार्म करेंगे और ये वापस जिंदगी में वापस आ जाते हैं।
मतलब ये जितने भी अंडे आपने सक करके निकाले, प्रिजर्व किए, ये सारे के सारे मैच्योर एग हैं और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है?
नहीं, अब ये क्या है, एग्जामिनेशन करके हम देखेंगे कि इनमें से कितने मैच्योर हैं। तो जैसे अगर 12, जैसे एक पेड़ को आपने एक संग झाड़ दिया, कुछ आम कच्चे होंगे, कुछ पके हुए होंगे, ऐसे ही है, हमने एक टाइम पे ओवरी को झाड़ दिया, तो जो निकाले हैं उनमें से कुछ M2 जो मैच्योर होते हैं, कुछ M1 जो इमेच्योर होते हैं, जिनको कई बार थोड़े घंटे रख दो इंक्यूबेटर में तो मैच्योर भी हो सकते हैं, और कुछ GV यानी कि बिल्कुल इमेच्योर है जो काम नहीं आएंगे। तो आप कह सकते हो कि अराउंड 80% मैच्योर एग मिलेंगे और 20% ऐसे होंगे जो इमेच्योर होंगे, जो हमारे काम के नहीं है। अब ये जो मैच्योर एग आए हैं, इसमें जब हम थॉ करें, जब फ्रीज कर दिए और जब हम थॉ करेंगे, तो आपके यू नो अब हम लोगों का एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया है फ्रोजन एग थॉ साइकिल का कि 98% वापस मिल जाते हैं। अगर मैंने 10 फ्रीज करे हैं तो करीब 9 तो मिल ही जाएंगे, 9 के 10 भी हो सकते हैं, तो 10 के 10 वापस एग्स मेरे पास है जब मेरे को यूज करने।
बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि देखिए विजाइना को लेके ना हमारे यहाँ पर इतने सारे टैबूज हैं, ऐसा लगता है कि संसार की सबसे अक्षुण चीज यही होनी चाहिए। इनफैक्ट डॉक्टर्स जब टेम्पोन और मेंस्ट्रुअल कप की सलाह देते हैं तो माएं सबसे पहला सवाल ये करती हैं कि क्या अनमैरिड बेटी को मैं ये लगा सकती हूँ, तो क्या एग फ्रीजिंग विवाहित लड़कियां करवाती हैं तो इसका वर्जिनिटी को लेके कोई समस्या उनके साथ होती है या नहीं?
जी जी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये मैं मानूंगी आपकी बात को कि ये एक देखिए अल्ट्रासाउंड तो हम एब्डोमेन के ऊपर से कर लेते हैं, पर जब निकालने हैं एग्स तब हमको वजाइना के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये बात सच है कि वर्जिनिटी अगर ऑल्दो आजकल वर्जिनिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ही कम हो गई है, बट हाँ मतलब यस वी हैव टू गो थ्रू वजाइना। तो मैं ये बोलूँ कि वर्जिनिटी मेंटेन्ड है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एब्डोमेन के थ्रू निकालने और वजाइना के थ्रू निकालने में फर्क है, और निकालना हमें इजी भी है और नंबर्स भी ठीक आते हैं, तो जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जो सेक्सुअली अभी वर्जिनल है उनके लिए ये सवाल सही है कि वर्जिनिटी उनकी जरूर हम इसमें क्योंकि हाइमन के थ्रू ही जाएंगे तभी हम वजाइना में पहुंच पाएंगे।
आइडियली एक सही एज क्या है एग फ्रीजिंग के लिए?
देखिए जैसा मैंने कहा कि 21 to 40 इयर्स तक तो एज है ही। मेरे पास अभी कल परसों ही यूके से 44 ईयर ओल्ड वुमेन आई थी जिसको अभी पार्टनर अभी भी नहीं मिला था। तो क्या है कि ये ना सोच जो है हमें अपनी ये बदलनी जरूर पड़ेगी कि और एक आप मानेंगे नहीं, एक मारवाड़ी मतलब ट्रेडिशनल फैमिली से एक मदर आई और उनकी बेटी थी 24 साल की, उन्होंने कहा कि आप इनके एग फ्रीज कर लीजिए। तो मैंने कहा अभी तो 24 की हैं, तो बोली मगर मैं तो इनको इंदिरा नूई की जगह पर देखना चाहती हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती 35 साल अगले मतलब 11 साल अगले ये अभी शादी या बच्चा करें। तो अगर ये 35 की हो गई पर तब आप इनके एग की क्वालिटी और आज के एग की क्वालिटी में तो रात और दिन का फर्क है। तो जब हमने अपनी लाइफ को प्लान ही कर लिया है तो फिर क्यों नहीं मैं आज फ्रीज करूं रादर देन मैं 35। तो ये जो सोच है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ना बहुत सारे एक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं हम इतना अच्छा खाते हैं, हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, हम मतलब व्हाई एट यू नो एन एक्ट्रेस यू वोंट बिलीव, अभी 38 में उसके फिर हम लोगों ने जब एग निकाले तो दो ही एग्स निकले, फिर निकाल, फिर हमने दो तीन साइकिल करी, दो 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 करके निकाले, तो वो बहुत ही शॉक थी, बोली अरे मुझे किसी ने बता दिया होता, मैं तो एक्टर हूं, मुझे पता था कि मैं कोई जल्दी शादी नहीं करने वाली हूं, तो मैंने क्यों नहीं टाइम पर अपने एग फ्रीज करे अगर मुझे किसी ने बताया होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए 40 तक आपके एग्स ठीक रहते हैं, बट जितना अर्ली करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी 30 पे अभी आपको पार्टनर नहीं मिला है और अब क्या हो गया है, यू नो रिलेशनशिप जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है, अब आपने शादी भी करी तो आप सोचते हैं कि अब साल दो साल तीन साल हम पहले परख लें कि हम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत सी लड़कियां मेरे पास ऐसी आती है जो बहुत दुखी हैं, अब डिवोर्स भी अगर लेना चाह रही हैं या साथ रहना, मतलब यू नो दे आर नॉट सो श्योर, तो वो कहती हैं कि मैं क्या करूं, मैं बच्चा भी नहीं करना चाहती, तो अनस्टेबल हूं, तो कम से कम मैं अपने एग फ्रीज करके तो रख लूं ताकि अगर मेरा ये पार्टनर नहीं भी रहा और कोई और पार्टनर आया। मेरे पास एक डॉक्टर थी जो मेरे ही अंडर यहाँ पे काम कर रही थी, तो वो 29 की थी जब ट्रेनिंग के लिए आई और तब उन्होंने अपने एग फ्रीज करे और उन्होंने मुझे तब कहा था कि मेरे हस्बैंड दुबई में है, अभी तो नहीं कर पा रही बच्चा, मगर 5 साल बाद अभी उनका डिवोर्स हुआ है, तो वो इतनी क्या बोलूं सुकून में है कि मैंने 29 पे अपने I think we got around 24 eggs from her that time, कि वो कहती है कि मेरे को अब ये 34 पे आके मुझे ये घबराहट नहीं है कि मेरी फर्टिलिटी यू नो मैं जल्दबाजी में मैं अब नहीं हूँ, कि भाई ठीक है इट इज नॉट अ गारंटी बट इट इज डेफिनेटली एन इंश्योरेंस कि आपके पास अपनी जेनेटिक मटीरियल पड़ा हुआ है कि अगर आपको जरूरत पड़ी और आप नेचुरली प्रेगनेंट नहीं हुए तो आपके पास ये धरोहर जो आपकी है वो सीमित है। तो जो एज है मैं बोलूंगी कि मेरे हिसाब से 29 से लेके 34-35 तक अगर आप पार्टनर स्पेशली के लिए ढूंढ रहे हैं और नहीं मिला है तो दैट्स द राइट वे टू गो कि आप अपने फर्टिलिटी चेक कराइए। एक चेक आ गया है आजकल, आपने अपना एक चेक करा के देखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए हर लड़की को ना अपना एक चेक कराना जरूरी है कि मेरे पास है कितना, अब मेरे पास है ही बहुत कम, अगर मेरा AMH और मेरा एक क्वालिटी जो है एक चेक में बहुत लो आ रही है, आजकल के जो टेस्ट है ना वो बड़ा डिटेल टेस्टिंग देते हैं, हम जो एक चेक करते हैं उसे हम पूरा बताएंगे कि आपके पास कितने साल हैं, कितना टाइम है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लो है तो या तो मैं शादी जल्दी कर लूं और बच्चा प्लान कर लूं, वो तो बेस्ट है, पर अगर वो पॉसिबल नहीं है और मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती तो फिर मैं कहूंगी कि मैं अपने एग फ्रीज कर लूं, और अगर इनफ एग एक साइकिल में नहीं आ रहे तो मैं दो साइकिल कर लूं, पर मेरा एक अच्छा सा नंबर जो मैं बोलती हूँ 8 से 15 एग्स अगर आपके पास फ्रोजन है तो आपके पास एक अच्छा चांस है प्रेगनेंसी आने का।
डॉक्टर बख्शी, बार बार एग क्वालिटी की बात हो रही है, ये एग क्वालिटी वास्तव में क्या है?
देखिए अगेन जैसे कि हम एज जब करते हैं तो हमारा क्वांटिटी तो कम होती है, क्वालिटी भी कम होती है, जैसे कहते हैं हमारी बॉडी में स्लोइंग डाउन हो रहा है, तो अब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे वो मिलते हैं, अलग होते हैं, तो वो अलग होने में स्लो हो जाते हैं, तो जो क्वालिटी है वो एग की वो ऐसी चीज है जो बिना देखे, मतलब खाली मैं बोलूं कि मैंने अल्ट्रासाउंड करा या आपको ऊपर से देखा या जो टेस्ट है, ये हमें क्वालिटी नहीं बताते हैं। क्वालिटी हमारी निकलने के बाद जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तब हम बता पाते हैं कि रियल क्वालिटी एग्स की है क्या, पर ये डेफिनेट है, देखिए इस बात में आप ये पक्का कर लीजिए कि 35 के बाद आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एकदम स्टीप फॉल होते हैं, तो जब पहले है वो जैसे मैंने आपको बोला 21 से 24 बेस्ट है, पर धीरे 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 कम हो रहे हैं, पर 35 आप हिट करते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रैपिड फॉल होती है, तो मैं इसीलिए बोलूंगी कि जब आप, इसीलिए मैंने कहा 30 के एज के अराउंड जब आप आ जाते हैं तो आप उसको जरूर एक अपना वो बना लीजिए, या तो जल्दी से सही बोलूं बेस्ट तो है शादी जल्दी करिए, बच्चे करिए, करियर क्लॉक एंड फर्टिलिटी क्लॉक दो ऑपोजिट क्लॉक्स हैं, मुझे मालूम है ये बात, मैं खुद इतनी एम्बिशियस करियर वुमेन हूं, बट जहां तक फर्टिलिटी की है देखिए वो नहीं रुकने वाली, तो आप अपनी या तो अपने करियर क्लॉक को थोड़ा सा विराम दीजिए, बच्चे करिए फिर उसके बाद शुरू करिए, और नहीं तो ये इतना खूबसूरत तरीका हमको मिला हुआ है, हम इसकी तरफ ध्यान दें।
क्वालिटी पर ही बात करते हैं कि क्वालिटी डाउन हो जाती है, मतलब ये है कि उस एग की मैच्योरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, बच्चे की हेल्थ से इसका कोई संबंध नहीं है, करें?
नहीं, हेल्थ से भी संबंध है, क्योंकि जब क्वालिटी डाउन हो रही है तो जैसे आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि 35 एंड अबव को हम एल्डरली प्रेग्नेंट वुमेन कहते हैं, और डाउन सिंड्रोम के और जो बाकी के एनोमलीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? चाहे वो नेचुरल प्रेग्नेंट हो, एक फ्रीजिंग के नहीं, आप रूटीन में भी अगर आप 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हम उसको बहुत आंखें एंटेना खोल के रखते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं आ रही, क्योंकि वो स्लोइंग है, वो एग की स्लोइंग है जो होगी होगी। तो हमें इसीलिए जो यंगर एग्स हैं उसमें दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रिजर्वेशन मिलता है।
अच्छा डॉक्टर, एज के अलावा और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एग क्वालिटी को खराब करते हैं?
देखिए बीएमआई, अगर आप ओबीज हैं और जब फैट होता है ना तो फैट में हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं, जब एस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं ना वो एफएसएच को भी, हमारे हार्मोन्स को डिप्रेस करते हैं और एग की क्वांटिटी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया पीसीओएस। अब पीसीओएस में क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी, मतलब बहुत सारे अंडे हैं मगर वो कहते हैं ना कि इतने सारे पर एक भी अच्छा नहीं, तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है वो चाहे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फैटी फूड या जंक एंड यू नो लेट नाइट, इन सब के कारण हमारा जो पीसीओ का यू नो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये साथ में एंडोमेट्रियोसिस, इतनी लड़कियां आती हैं जिनको, और एंडोमेट्रियोसिस की तरफ मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस क्या ना डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल है। कोई लड़की जो कहती है मुझे बहुत पेनफुल मेंसेस है, मेंसेस के वक्त पेन बहुत ज्यादा है, इंटरकोर्स के वक्त बहुत पेन हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है एलिमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हो, यानी कि एंडोमेट्रियम अपनी जगह यूट्रस को छोड़ के बाहर कहीं आके है, वो बैठ गया है और मेंसेस के टाइम पे यूट्रस का एंडोमेट्रियम कहते हैं वो एंडोमेट्रियम भी पेन कर रहा है, तो आपको पेन होगा और पेन जब होता है इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है, फिर खिंचाव होता है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ये सारी बीमारियां भी एक की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। तो हम अपना वेट को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल ठीक रखें, तो इन सबसे जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो सही रहेगा और हमारा जो एग क्वालिटी भी इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट।
जी बहुत जरूरी जानकारियां ये हैं, मुझे लगता है कि ये किसी भी महिला किसी भी पुरुष के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये जरूरी पॉइंट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने जब प्रोसेस के बारे में बताया तब कहा कि हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, तो क्या इन हॉर्मोन्स का कोई साइड इफेक्ट होता है उस समय बॉडी पर?
देखिए जैसे कि हर इंजेक्शन का थोड़ा पेन पेन या लालाई आ गई तो बड़ा, एंड क्योंकि ना इंजेक्शन बड़े शॉर्ट टर्म है, देखिए कोई भी हार्मोन अगर हम सालों ले रहे हैं तो हम कहेंगे, मगर बहुत शॉर्ट टर्म मतलब 10 days एंड दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट, मतलब एक महीने की आधी साइकिल पे कोई सच बोलूं तो ऐसा कोई खास, मे बी स्लाइट नोजिया स्लाइट ब्लोटिंग बट वेरी वेरी रेयर, वो भी मैं बोलूंगी कि 2-5% को ही होती है, बाकी 95% हैव रियली नो साइड इफेक्ट्स।
और ये जो फ्रोजन एग है आपके, ये कितने समय तक कितने सालों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
सही बोलेंगे तो जब तक फ्रोजन है और फ्रीज कि यानी कि जो लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर और वो जो लैब कंडीशन है जिसमें फ्रीज किया है वो मेंटेन्ड है, तो ये इस एग को कहीं कुछ नहीं होने वाला कितने ही साल फ्रीज रखें। मगर गवर्नमेंट का जो डिक्टम है वो हमें है 10 years कि 10 साल तक आप अपने एग्स को या स्पर्म्स को फ्रीज करके रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो तबका फ्रीज करता है वो है कैंसर वाले, तो जैसे आजकल कैंसर भी बहुत राइज में है, ब्रेस्ट कैंसर है, और आपको कैंसर हुआ और आप नेचुरली जिंदगी से ऊपर कुछ भी नहीं तो आप भागते हैं कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सर्जरी करने के लिए। जैसे ही कीमो या रेडियो हमारे शरीर पर आती है ये एग्स या स्पर्म्स हमारे जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत पेशेंट्स, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और सफदरजंग के बहुत क्लोज हैं, तो जैसे ही कोई इवन बच्चों का आजकल चाइल्डहुड कैंसर बहुत बढ़ गए हैं, तो वो जब सर्जरी या रेडियो के लिए जा रहे होते हैं तो भागे भागे आते हैं कि हमारे जो फर्टिलिटी है प्लीज उसको प्रिजर्व कर लीजिए। और आप मानेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट से लाइफ स्पैन भी अच्छा हो गया, अगर अर्ली पकड़ा जाता है तो आपकी लाइफ लिटरली नॉर्मल चलती है। तो जब आप इस फेज से बाहर निकलते हैं तो फिर आप सोचते हैं अरे अब 7-8 साल बाद अब मैं बच्चा करूं, तब आपको सडनली ध्यान आता है कि अरे मैंने प्रिजर्व कर लिया होता। तो कैंसर इज अनदर वन बिग रीजन बिफोर ट्रीटमेंट, मतलब रेडियो कीमो होने से पहले अगर आप उनको प्रिजर्व करते हैं तो यही चीज स्पर्म के लिए भी है, एक के संग स्पर्म का भी यही है कि टेस्टिकुलर कैंसर वगैरह है, टेस्टिस निकाल दी तो उनके पास तो चांस खत्म हो गया, तो उससे पहले वो स्पर्म इजैकुलेट करके अगर फ्रीज कर पाए। तो ये चीज अब हम डॉक्टर्स को भी अवगत करा रहे हैं, क्योंकि जैसे कैंसर सर्जन है वो एक अपनी निगाह से देख रहे हैं कि कैंसर को कैसे ट्रीट करें, उस समय उनके दिमाग में शायद ये नहीं आ रहा कि बच्चा है अभी किसी फ्यूचर फर्टिलिटी का क्या होगा। तो हम लोग डॉक्टर्स को भी ये अवेयरनेस ला रहे हैं कि प्लीज जब आप किसी भी ऊपर ऑपरेट करें बच्चों के ऊपर तो आप उनसे पहले अगर उनका हो सकता हो तो उनकी फर्टिलिटी फ्रीज करवा दीजिए। तो 10 साल तो गवर्नमेंट का डिक्टम है, मगर ऐसे लोगों के लिए अभी गवर्नमेंट और सोच रही है कि इनके लिए और बढ़ा दिया जाए, बट राइट नाउ एटलीस्ट 10 ईयर्स।
ओके, तो डॉक्टर जब ये फ्रोजन एग हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि अब हम बेबी प्लान करें, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है इनके इस्तेमाल का?
देखिए, जैसे आप अपने गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराई ये कराई, अब आपको कितनी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी मालूम नहीं है, ऐसे ही आपने अपने एग्स रख लिए, अब आप शादी हुई और आप नेचुरल प्रेग्नेंट हो गए तो ये आपकी धरोहर पड़ी हुई है, शायद आपको उसकी जरूरत ना भी पड़े। मगर अगर आपने 6-2 साल ट्राई किया नेचुरली और आपका नहीं हो रहा तो वापस आप उस सेंटर में जाएंगे, अब आपके पास जब पार्टनर है तो वो आपके ये एग्स को थॉ करेंगे, आपके पार्टनर के स्पर्म के संग फर्टिलाइज करेंगे, बेबी बनाएंगे और फिर आपके अंदर डाल देंगे। तो फिर ये प्रोसेस जैसे IVF प्रोसेस है वैसा हो गया कि एग्स निकल गए थे, वो पहले निकल गए थे, अब थॉ करेंगे और अब फ्रोजन स्पर्म या नेचुरल स्पर्म के संग फर्टिलाइज करेंगे और फिर एम्ब्रियो बना के आपके अंदर डाल देंगे। और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, जिसका 50% चांस होता है कि आई विल नॉट से एनीथिंग इज 100%, बट 50% चांस है कि अगर अच्छे एम्ब्रियोज बन गए, आपकी लाइनिंग अच्छी है तो आपके अंदर डाले तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
वेरी गुड। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस बहुत कॉस्टली प्रोसेस है या बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है?
दोनों चीजें बिल्कुल नहीं, ना तो कॉस्टली है ना टाइम टेकिंग। जैसा मैंने आपको बोला कि 15 दिन के करीब जिसमें घर बैठ के आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऑफ हॉस्पिटल में तो आपको एक ही दिन पिकअप वाले दिन 10-15 मिनट का है, एनेस्थीसिया है तो हो सकता है 2-2.5 घंटा आपको वहां पे रहना पड़े और फिर आप उसी वक्त आते हैं, खाली पेट आते हैं, आपको ओटी ले जाते हैं और 10-15 मिनट के प्रोसेस के बाद आप वापस एनेस्थीसिया से निकलकर घर चले जाते हैं। तो कहीं भी आपकी लाइफ में कोई रुकावट नहीं, आप अपना काम करिए, आप रादर लोग अपने वर्क से ही आते हैं, एग्स निकाले 2 घंटे के आराम करने के बाद वापस अपने काम पे चले जाते हैं, तो कहीं भी टाइम वाइज टाइम लाइन में ये वो नहीं है। दूसरा है, आपने बात करी कॉस्ट की, कॉस्ट भी जो है बहुत तरह के अब वो आ गए हैं। देखिए, मुझे लगता है 1.5-2 लाख के आसपास का कॉस्ट करीब आता है, एंड आई डोंट थिंक एज अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग की वो करेंगे। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बहुत तरह की और चीजें भी अवेलेबल हैं जो आपने एक टाइम पे कुछ दिया फिर 10-10 हज़ार रुपये महीना दिया, तो बहुत तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अपनी जिंदगी की सुकून के लिए और अपने जीवन भर का जेनेटिक मटीरियल रखने के लिए मुझे लगता है ये कॉस्ट कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है।
डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगी कि क्या हम एक दूसरे के एग को भी यूज कर सकते हैं? मान लीजिए हम अक्सर रिश्तेदारियों में बच्चा गोद लेने गोद देने की उदाहरण देखते हैं, तो क्या हम एग्स भी एक दूसरे के बोरो कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, पहले जमाने में कुछ जूस है जो ब्लड भी सोचते थे, अब हमको पता है, अब शायद कोई भी नहीं सोचता, ब्लड की कमी हुई ले आइए ब्लड, ब्लड बैंक से लिया और आपने ले लिया, तो यानी कि शेयरिंग आ गई। अब एग शेयरिंग बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब आपके खुद के एग से आपको अगर अब नहीं चाहिए और आपके खुद के बच्चे हो गए और आपके एग्स पड़े हुए हैं और आप अपनी बहन को या दोस्त को या किसी को देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ऑप्शन। इसमें मतलब एक तरीके का एक नॉन अडॉप्शन भी आप इसको कह सकते हैं कि भाई एटलीस्ट आपको मालूम है कि आप ही के सिस्टर के एग्स है तो उसकी एक क्या क्वालिटी है, जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या जेनेटिक डिजीजेज हैं फैमिली में, ये सारी चीजों के संग आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एग्स आप डोनेट भी कर सकते हैं जब आपको लगता हो कि आपकी खुद की जरूरत पूरी हो गई है।
और क्या भारत में एग्स खरीदने की प्रक्रिया उपलब्ध है?
देखिए, खरीदना इज अ वर्ड इन विच मनी इज एक्सचेंज एंड मनी एक्सचेंज इज नॉट अलाउड एट ऑल। ये अलाउड नहीं है कि हम खरीदे जाएं। हाँ, आप अपने एग्स आप किसी को देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, या आपका कोई और नोन आपको देना चाहे तो अल्ट्रुइस्टिक प्रोसेस है, यानी कि आप पैसे नहीं दे सकते। ले सकते हैं आप मगर विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी, क्योंकि जहां खरीद बेच के वहां एक कमर्शियल एंटिटी आ गई जो लॉ में है कि हम नहीं खरीद सकते।
अब हम एकदम पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से वो टिप्स दें कि अगर कोई लड़की अपने एग फ्रीज करवाना चाहती है तो वो सेंटर में या लैब में वो कौन सी 4 या 5 चीजें हैं जिसे उन्हें उसे चेक करना चाहिए।
सबसे पहले आजकल तो सब्जी खरीदने से पहले भी रिव्यू होता है, सो प्लीज चेक ऑन द टेस्टिमोनियल रिव्यूज ऑन यू नो जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं। पहली बात एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लैब एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एक ही जगह पर आपका लैब एंड लैब का जो मेंटेनेंस है ये इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे मालूम है कि आप कहेंगे मुझे अंदर जाके कैसे पता, बट जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि टेम्परेचर है, रिफिलिंग है, AI है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो अगर आपको और दूसरी चीज है लॉफुली आज आपकी शादी यहाँ से सिंगापुर हो गई और आप अपने एग्स आप वहां ले जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने इसका भी एक मैकेनिज्म बना दिया है, एक नेशनल बॉडी है, आप लिखेंगे उस नेशनल बॉडी को कि हम अपने एग्स यहाँ से वहां ट्रैवल कर सकते हैं, ले जाना चाहते हैं, अपने यूज के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपकी धरोहर है जो रहेगी आपकी, जहां अमेरिका ले जाएं कहीं ले जाएं, इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है। मानती हूँ हर सेंटर और हर लैब इक्विप नहीं है इसके लिए, पर तो ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। जहां भी आप करें वो लैब की जो मेंटेनेंस है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है और क्लिनिशियन की जो क्वालिफिकेशंस है एंड द नंबर ऑफ साइकल्स दैट वी हैव डन, कितने थॉ करे हैं, कितने हम लोगों ने यू नो, ये सारी चीजें पूछना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर रीता बख्शी, आज आपने हमें एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत जरूरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मुझे यकीन है कि हमारे लिसनर्स को इसका जरूर लाभ होगा। आप हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
EPR की तरफ से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कभी भी जरूरत हो तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।
ये था हमारा आज का एपिसोड, इसे प्रोड्यूस किया था श्रुति पाल ने और एडिट किया था संजू अब्राहम ने। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com पर। हेल्दी जिंदगी सीजन 2 पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ, क्योंकि पहला धन निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।